ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ओली ने सभी 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन, सेवा प्रवाह और संघीय सरकार द्वारा किए जाने वाले सहजीकरण संबंध में किया विचार विमर्श। लांगटांग राष्ट्रीय निकुंज के आधार इलाके में लगी आग हो गई है बेकाबू। आग को काबू करने के लिए सर्वपक्षीय सहयोग के लिए निकुंज ने किया है आग्रह। सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी टीका लगाया गया 40% किशोरियों को। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ लगाए प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, मौजूदा चुनौतियों और संघीय सरकार द्वारा किए जाने वाले सुविधाजनक उपायों पर आज सभी 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल वार्ता की। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के एक्शन रूम से प्रधानमंत्री ओली ने मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बार इस तरह का संवाद किया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वे जहां तक संभव हो सके प्रदेशों में जाकर और कुछ प्रदेश सभाओं में भी जाकर राष्ट्र निर्माण के बारे में केंद्र और प्रदेश की सोच पर विचार विमर्श करेंगे और समस्याओं की पहचान करके उन्हें समाधान के स्तर पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सूचना प्रविधि के युग में इसका उपयोग करके जिला स्तर और योजनागत रूप से मुख्यमंत्री इस तरह की चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल नेपाल की ओर बढ़ने के कारण स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी सूचना प्रविधि का उपयोग करके जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने इस तरह की चर्चा आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त किया और अपनी अपनी सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष में अब तक की हुई भौतिक और वित्तीय प्रगति, मौजूदा चुनौतियों और समस्याओं के समाधान के उपायों के बारे में जानकारी दी। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल ने कहा कि मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक और नेपाल सरकार के सचिवों की बैठक में चर्चा का विषय बनाया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में आज चिकित्सा शिक्षा आयोग की 16वीं बैठक में निजी मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकों को सरकारी स्तर 8वें स्तर के बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध कराने के विषय में विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबार में हुई आयोग की बैठक में विचार विमर्श हुआ। अन्य मुद्दों पर आगे चर्चा करते हुए जल्द ही आयोग की बैठक में निर्णय लेने का निष्कर्ष निकाला गया है। बैठक में संबंधित कॉलेजों में 2 वर्ष के अध्ययन और काम के समझौते को न मानने वाले छात्रों से वार्षिक 23 लाख रूपये शुल्क लेने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। समुद्र तल से 3,832 मीटर की ऊंचाई पर फैले जंगल की आग को काबू करने के लिए लांगटांग राष्ट्रीय निकुंज ने सर्वपक्षीय सहयोग की अपील की है। निकुंज के आधार क्षेत्र में पड़ने वाले नुआकोट जिले की दुपचेश्वर गांव पालिका 1 के मूल थला क्षेत्र के जंगल में माघ 22 गते से लगी आग अनियंत्रित होने के बाद सहयोग के लिए निकुंज ने अपील की है। निकुंज के नुआकोट की तरफ के आधार क्षेत्र में फैली आग ने अब तक लगभग 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नष्ट कर दिया है और आग तेजी से फैल रही है। ये जानकारी निकुंज ने दी। लालीगुरास सहित विभिन्न प्रजातियों के वनस्पति वाला 1500 से अधिक हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है। निकुंज के वरिष्ठ संरक्षण अधिकारी श्याम कुमार शाह ने बताया कि निकुंज संरक्षण में तैनात नेपाली सेना और निकुंज के कर्मचारियों के प्रयासों के बावजूद आग पर नियंत्रण पाने में कठिनाई हो रही है। आग बुझाने के लिए स्थानीय समुदाय, सामाजिक संगठनों और हेलीकॉप्टर कंपनियों से भी सहयोग मांगा गया है। विक्रम संवत 2032 साल में स्थापित लांगटांग राष्ट्रीय निकुंज में 57% रसुआ, 7% नुआकोट और 36% सिंधुपालचोक जिले के हिमालयी क्षेत्र शामिल हैं। सरकार द्वारा संचालित सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एचपीवी टीकाकरण अभियान में लगभग 40% किशोरियों ने टीका लगवाया है। स्वास्थ्य सेवा विभाग की बाल स्वास्थ्य तथा टीकाकरण शाखा के प्रमुख डॉ अभियान गौतम के अनुसार टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन यानी माघ 22 से 24 तक 39.46% किशोरियों ने टीका लगवाया है, यानी 16,88,768 किशोरियों ने टीका लगवाया। ये टीकाकरण अभियान सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है जो एचपीवी वायरस के कारण होता है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक किशोरियों को इस जानलेवा बीमारी से बचाना है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विद्युतीय व्यापार विधेयक संबंधी उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति का प्रतिवेदन पेश किया गया। बैठक में उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान ने विद्युतीय व्यापार विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2081 पेश किया। इसी तरह बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के प्रतिवेदन सहित विधायन विधेयक 2080 का प्रस्ताव पेश किया। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने विकास निर्माण के कार्यों को गति देने और किसानों को आसानी से रासायनिक मल उपलब्ध कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने स्वर्गद्वारी गुठी पीड़ितों की जायज मांगों को संबोधित करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। बैठक में सांसद नगीना यादव ने काठमांडू महानगरपालिका पर कबाड़ी व्यवसायियों को अनावश्यक कष्ट देने का आरोप लगाया। उन्होंने कानूनी रूप से पंजीकृत व्यवसायियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। सांसदों ने भारत में आयोजित महाकुंभ मेले में सहभागी होने के क्रम में कुछ नेपाली नागरिकों की मृत्यु और लापता होने जैसे मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक मार्च 27 को रविवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभा ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को प्रदेश सभा बैठक में विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित किया है। आगामी फागुन 5 सोमवार को होने वाली प्रदेश सभा बैठक में विशेष संबोधन के लिए आज प्रधानमंत्री ओली को आमंत्रित किया गया है। ये बात लुम्बिनी के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य ने बताई। सभामुख तुलाराम घरती मगर ने मुख्यमंत्री आचार्य के माध्यम से प्रधानमंत्री ओली को विशेष संबोधन के लिए आज आमंत्रित किया। गंडकी प्रदेश सरकार बनने के बाद से प्रदेश में 104 पुल और 84 हैंगिंग ब्रिज बनाए गए हैं। बता दें कि ये परियोजनाएं प्रदेश सरकार की लागत में तैयार हुई हैं। गंडकी के भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मंत्रालय के मुताबिक सड़क पुल और हैंगिंग ब्रिज का निर्माण प्रदेश सरकार के मुख्य कार्यक्रम है। अब भी 65 पुल निर्माणाधीन है और 25 पुलों के DPR तैयार होने की प्रक्रिया में है। मंत्रालय की एक महाशाखा के प्रमुख डॉ महेंद्र बानिया ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अन्य 17 हैंगिंग ब्रिज के निर्माण के लिए पूर्वाधार का काम आगे बढ़ाया गया है। पिछले 9 महीने से यूक्रेन की जेल में रहे 2 नेपाली नागरिकों का उद्धार किया गया है। जर्मनी के बर्लिन स्थित नेपाली दूतावास ने यूक्रेन की जेल में रहे 2 नेपाली नागरिकों का उद्धार कर उन्हें नेपाल भेजा है। दूतावास के बयान के मुताबिक दोनों ही अध्यागमन कानून के उल्लंघन के आरोप में सन 2024 के मई से यूक्रेन की जेल में बंद थे। हमास के कब्जे में रहे नेपाली युवा विपिन जोशी की रिहाई के लिए परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकजी से बातचीत की है। हमास के नियंत्रण में रहे युवा विपिन की रिहाई के लिए पहल करने का आग्रह करते हुए मंत्री राणा ने बीती रात ईरान के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत की थी। जवाब में ईरानी विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे हमास के अधिकारियों के साथ अब होने वाली बैठक में वे विपिन की रिहाई के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्री के सचिवालय ने दी। परसा में गेहूं के लिए रासायनिक मल का अभाव होने के कारण वहां के किसान चिंतित हैं। गेहूं में अंतिम बार रासायनिक मल डालने के समय पर मल उपलब्ध न होने के कारण किसान सीमावर्ती भारतीय बाजार से मल लाने के लिए मजबूर हैं। अब गेहूं में बाली लगने का समय हो गया है और इस समय उसमें प्रति कट्ठा 2 किलो की दर से यूरिया खाद डालना जरूरी है। ये बात स्थानीय किसान के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताई। जाजरकोट की भेरी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के धलदा में स्थापित जड़ी बूटी प्रशोधन केंद्र से जड़ी बूटी का प्रशोधन शुरू हो गया है। इन दिनों वहां तिमूर का प्रशोधन हो रहा है। ये जानकारी कार्यालय प्रमुख बखत बहादुर साउद ने दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में सुगंधवाल, जटामसी और तिमूर संकलित कर प्रशोधन करने का लक्ष्य है। प्रशोधन केंद्र की स्थापना होने से जड़ी बूटी के व्यावसायिक उत्पादन और बाजार उपलब्धता में मदद मिलने की अपेक्षा की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर अमेरिका और उसके सहयोगी इसराइल के खिलाफ अनुचित और आधारहीन कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। इस आदेश के तहत आईसीसी के अधिकारियों और उनके परिवार के अलावा अदालत की जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आईसीसी ने नेतन्याहू पर गजा में कथित युद्ध अपराध का आरोप लगाया था, जिसे इसराइल ने नकार दिया था। आईसीसी ने हमास कमांडर के खिलाफ भी वारंट जारी किया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ओली ने सभी 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन, सेवा प्रवाह और संघीय सरकार द्वारा किए जाने वाले सहजीकरण संबंध में किया विचार विमर्श। लांगटांग राष्ट्रीय निकुंज के आधार इलाके में लगी आग हो गई बेकाबू। आग को काबू करने के लिए सर्वपक्षीय सहयोग के लिए निकुंज ने किया है आग्रह। सर्वाइकल कैंसर के विरूद्ध एचपीवी टीका लगाया गया 40% किशोरियों को। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ लगाए प्रतिबंध। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।